आठवां अध्याय। अब हमारा परिचय मुख्य सताने वाले से कराया जाता है। एक जलन रखने वाला युवा यहूदी, एक फरीसी जिसका नाम शाऊल है, स्तिफनुस के बद से सहमत था तथा पथरवाह करने वालों के कपड़ों की देखभाल कर रहा था, उन्हें शाबाशी दे रहा था। परंतु मुझे शक नहीं कि स्तिफनुस की मृत्यु का पौलुस पर बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, जिससे वह कभी बच नहीं पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस के परिवर्तन की पृष्ठभूमि यही थी। आपको याद होगा कि यीशु ने पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर पकड़ा था। पौलुस मसीहियों को बंदीगृह में डलवाने के लिए दमिश्क जा रहा था, तब प्रभु ने उससे कहा, पौलुस तेरे लिए पैने की धार पर लात मारना कठिन होगा। और स्तिफनुस की मृत्यु एक प्रकार से पौलुस के लिए पैने की धार थी। उसका मुख स्वर्गदूत के समान दिखाई दे रहा था, और जो गवाही स्तिफनुस ने दी थी वह थी, हमारे पितर गलत थे, यूसुफ को हमारे पितरों ने ग्रहण नहीं किया तो भी परमेश्वर ने उसको बड़ा अधिकारी बना दिया, मूसा को हमारे पितरों ने ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर ने उसे शासक बनाने के लिए चुन लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी परमेश्वर के शासक को ग्रहण न करने के दोषी हों? और पत्रस ने ठीक ही कहा था, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। अब हम आठवें अध्याय पहले दो आयतों को पढ़ते हैं। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए, और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। हो सकता है कि ये भक्त विश्वासियों के समूह या कलीसिया के सदस्य न हो, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बड़ा विलाप किया। परमेश्वर के संतान की मृत्यु पर क्या होता है? यदि किसी को इसका सच्चा ज्ञान हो तो मृत्यु उसके लिए अधिक विलाप का कारण नहीं होती है, परंतु मृत्यु उनके लिए आनंद का कारण होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि मृतक विश्वासी परमेश्वर के राज्य में है। हो सकता है कि कुछ यहूदी भक्त लोग, जिनको मसीहों के रूप में पहचान नहीं दी गई थी, केवल भक्त लोग, और यहूदी का वर्णन सामान्यतः उसकी भक्ति के अनुसार होता था, वे स्तिफनुस की लाश को ले गए और विलाप किया कि ऐसे भले युवा ने कट्टरवादियों द्वारा ऐसा व्यवहार सहा। तीसरी आयत, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर और पुरुषों व स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। इस प्रकार महासभा से पौलुस को अधिकार मिला कि उनको बंदीगृह में डाले जो प्रभु का नाम लेते थे, और वह स्थानीय कलीसियाओं में जाकर जुल्म ढा रहा था। चौथी आयत, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। इस प्रकार सताव के द्वारा कलीसिया का अंत होने के बदले उनके तितर बितर होने का कारण गवाही सब जगह फैल गई, क्योंकि जहां कहीं वे जाते थे वे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, और इस प्रकार सुसमाचार सारे यहूदिया व सामरिया में फैल गया। यीशु ने प्रथम अध्याय के आठवें पद में अपने शिष्यों से कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम तथा जगत के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और उन्होंने पत्रस से कहा था, तुमने नगर को उस मनुष्य की शिक्षा से भर दिया और यहूदिया और सामरिया को भी। और अब हम कलीसिया का अगला अभियान देखते हैं। वह सताव के परिणाम स्वरूप यरूशलेम के पार यहूदिया व सामरिया में फैल गई। कलीसिया के सताने वालों में प्रमुख शाऊल था, और पांचवीं आयत में और फिलिप्पुस। अब हमारा परिचय उन सात में से दूसरे व्यक्ति से कराया जाता है जिनको खाने पीने की व्यवस्था तथा कलीसिया की भलाई के कामों को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। अब परमेश्वर दूसरे व्यक्ति का प्रयोग करता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि से भरा व सुनाम है। परमेश्वर उसे एक प्रचारक के रूप में काम में ले रहा है। वर्षों बाद हम पाते हैं कि फिलिप्पुस कैसरिया में है, वह एक प्रचारक कहलाता है। हमें बताया गया कि उसके पास चार पुत्रियां थीं जिनको भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। जब पौलुस यरूशलेम को लौटा तो वह कुछ दिन कैसरिया में फिलिप्पुस के घर में ठहरा। मैं कल्पना करता हूं कि जब पौलुस व फिलिप्पुस दोनों वहां थे तो उन्होंने स्तिफनुस के साथ उनके कुछ अनुभवों को याद किया होगा, क्योंकि पौलुस तो वहीं था जहां स्तिफनुस को पथरवाह किया गया था, और निस्संदेह फिलिप्पुस भी वहीं कहीं रहा होगा। वे कह रहे होंगे कि पहले उनको मार्ग कैसे भिन्न थे और कैसे परमेश्वर ने उन दोनों को सुसमाचार की सहभागिता में इकट्ठा किया, और बाद में वे कैसरिया में कैसे एक साथ आए। पांचवी आयत, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। याद रखें कि मसीह शब्द के लिए यूनानी में ख्रीस्ट शब्द लिया गया है। सामरी मसीह की प्रतीक्षा में थे। आपको याद होगा कि जब यीशु सामरिया में एक सामरी स्त्री से कुएं पर मिला था, उसने उससे कहा था, हम जानते थे जब मसीह आएगा हमें सब बातें सिखाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वे मसीह की खोज में थे, आपको याद होगा कि वह स्त्री गांव में गई और लोगों को बताने लगी, आओ और एक मनुष्य की सुनो जिसने मुझे वह सब बता दिया जो मैंने किया, कहीं यही तो मसीह नहीं। वह निकले और यीशु को सुना और कहा, अब हमें विश्वास है, इसलिए नहीं कि तूने बताया, परंतु हमने स्वयं देखा व सुन लिया है। और इस प्रकार बीज तो समरिया में बोया जा चुका था और बाद में फिलिप्पुस ने वहां मसीह का प्रचार किया। छठी आयत से आगे, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था देखकर उन्होंने एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुत में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। सामरिया नगर में सुसमाचार का प्रचार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के हृदयों में बड़ा आनंद था। सुसमाचार प्रचार का परिणाम तो सदा आनंद ही होता है। नवी आयत में, इससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बताता था। ये व्यक्ति एक टोना था जो जादू का प्रयोग करता था। लोग मानते थे कि उसके पास दिव्य जादुई शक्तियां हैं। और दसवीं आयत में, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। वे शमौन के जादू टोने से स्वतंत्र हुए और उन्हें सुसमाचार सुनाकर बपतिस्मा दिया गया। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में सुना कि सामरिया में लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पत्रस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पत्रस व यूहन्ना, जिनको सुसमाचारों में हम एक साथी के रूप में देखते हैं, यद्यपि वे भिन्न भिन्न स्वभाव के थे, तो भी एक साथ रखे गए थे, क्योंकि उनमें एक दूसरे के साथ निकट के संबंध थे। परंतु यह रुचिकर है कि प्रेरितों के काम में यूहन्ना का यह अंतिम विवरण है, जबकि पत्रस का आगे भी जिक्र है। बाद में पौलुस, बरनबास व दूसरों का विवरण है, परंतु यह विचित्र बात है कि प्रेरितों के काम में यूहन्ना का यह अंतिम जिक्र है। यूहन्ना और सभी शिष्यों से कहीं अधिक जिया था और बाद के वर्षों में उसने सुसमाचार के अतिरिक्त तीन पत्रियां व प्रकाशित वाक्य भी लिखे। परंतु यहां जब यरूशलेम की कलीसिया की समस्याएं सभा के सामने लाई गईं, तो यूहन्ना का किसी भी भूमिका में जिक्र नहीं है। यूहन्ना के विषय खामोशी है, मानो वो था ही नहीं, पता नहीं क्यों। परंतु जैसे यूहन्ना ने सुसमाचार में कहा, मेरे विचार से यदि वो सब बातें लिखी जाती जो लिखना चाहिए था, तो इतनी पुस्तकें होती कि संसार में रखने की जगह न होती। इस प्रकार जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरिया में लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, तो उन्होंने वहां पत्रस व यूहन्ना को भेजा। अब वो विचार खत्म हो जाता है कि पत्रस पोप था, क्योंकि वह प्रेरितों द्वारा भेजा गया था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसके पास पोप का सा अधिकार नहीं था कि वह आज्ञा देता रहता, परंतु हम देखते हैं कि यहां पर प्रेरितों ने उसे भेजा था। और पंद्रहवीं आयत में, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अभी तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। यह रुचिकर है कि बाइबल टीकाकारों के लिए एक समस्या है कि उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा क्यों न पाया था, अभी तक वह उन पर नहीं उतरा था। यह सामान्यतः माना जाता था कि किसी व्यक्ति का पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा तभी होता है जब वह मसीह के देह का अंग होता था। बिना पवित्र आत्मा के और कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता है। जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता करके स्वीकार करता है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है। इस विवरण में हम पाते हैं कि सामरिया के लोगों ने विश्वास किया और जल का बपतिस्मा भी लिया, परंतु प्रेरितों को उनके पास भेजा गया कि वे लोग अब पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अभी तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। मुझे अचंभा होता है कि ये विद्वान इस संदर्भ पर समस्या में पड़ जाते हैं। क्या उन्होंने वहां यूनानी भाषा के उस शब्द को नहीं देखा जिसका अर्थ है उतरा? आपको याद होगा कि पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, वह तुम में है और तुम में रहेगा। परंतु बाद में यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। अब यह वही यूनानी शब्द है जिसका यहां भी प्रयोग किया गया है। पवित्र आत्मा अभी उन पर नहीं उतरा था, इसलिए टीकाकारों को यह समझने में समस्या होती है। वे पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे। ये समरिया में एक विशेष स्थिति थी, क्योंकि ये यरूशलेम के बाहर प्रथम बार हुआ था। अब ये विद्वान संघर्ष करते हैं और इस संदर्भ के संबंध में हर प्रकार की मूर्खता की बातें करते हैं। क्योंकि ये वे नहीं मानते कि पवित्र आत्मा का कार्य परिवर्तन के अतिरिक्त सामर्थ्य प्रदान करने का भी होता है। जब वह हम पर आता है तब वह परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारा अभिषेक करता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा न केवल हमें उद्धार की ओर ले जाता है परंतु उद्धार के पश्चात सामर्थ्य भी प्रदान करता है। उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उनका बपतिस्मा हुआ था और स्वाभाविक है कि पवित्र आत्मा उन पे वास करता था, परंतु उनको सामर्थ्य पाने का अनुभव प्रेरितों के समान नहीं हुआ था जैसे कि प्रेरितों को पेंतिकुस्त के दिन हुआ था, क्योंकि वह अभी तक उन पर न उतरा था। केवल प्रभु यीशु के नाम में उनका बपतिस्मा हुआ था। 17वीं आयत में तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। जब शमौन ने देखा कि हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है तो कुछ ध्वनि या दृश्य प्रकट हुआ होगा कि उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है, नहीं तो वह सामर्थ्य क्यों मांगता। यदि वे केवल उन पर हाथ रखते और कहते पवित्र आत्मा ले लो और ये दिखाने के लिए कि वरदान मिल गया कुछ देखने या सुनने को न होता तो ऐसी सामर्थ्य को पाने की तीव्र इच्छा शमौन में न होती। बेशक किसी न किसी प्रकार का प्रमाण अवश्य दिखाई दिया होगा जो उनके जीवन में परमेश्वर के आत्मा ग्रहण करने के बाद प्रकट हुआ होगा, और मुझे कोई शक नहीं कि वे अन्य भाषा बोल रहे होंगे और भविष्यवाणी भी कर रहे होंगे। यहाँ ऐसा कोई जिक्र नहीं है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुआ होगा और इसी कारण शमौन ने सामर्थ्य को खरीदना चाहा। इस सामर्थ्य को खरीदने की शमौन की इच्छा या कलीसिया में पद की लालसा जो बाद में कलीसिया में व्याप्त हो गई, उसके लिए प्रयोग किया गया शब्द शिमौन का आरंभ यहीं से हुआ। इसका अर्थ है कलीसिया में पद को खरीदना। दुर्भाग्य से कलीसिया के इतिहास में वह एक अंधकार भरा युग था जब कलीसिया में पदों की नीलामी होती थी। एक समय ऐसे भी थे जब पोप तथा उसके पद की सचमुच नीलामी की जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्राप्त होती थी। इस भयंकर बुराई को जो कलीसिया में आ गई थी शिमौन नाम दिया गया था। जादूगरों में तो ये आम बात है, यदि किसी जादूगर के पास एक अच्छी कला होती है तो दूसरे जादूगर उसे वैसा देखकर सीखने का प्रयत्न करते थे कि वे कैसे की जाती है, और कुछ जादूगरों का ये अभ्यास था कि उन कलाओं को बेचें। इस प्रकार शमौन एक धोखेबाज जादूगर लोगों को अचंभित करता था। उसने बीते समय में कई प्रकार की जादूगरी खरीदी थी, इसलिए वह सोचने लगा कि वह परमेश्वर के वरदान को भी खरीद सकता है। 20वीं आयत पत्रस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। कैसी भयंकर बात! और आगे लिखा है, इस दान में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। पत्रस ने परख के वरदान का प्रयोग करते हुए शमौन के हृदय को जाना, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। यद्यपि उसने फिलिप्पुस का अनुसरण किया और उन कामों से अचंभित हुआ जो वह करता था, उसके हृदय में पित्त किसी कड़वाहट थी। शायद कड़वाहट इस बात की कि अब लोग उसको उतना नहीं महत्व देते थे जितना वे पहले महत्व देते थे। अब लोग एक नए व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह के पीछे चलते थे जिसका प्रचार फिलिप्पुस ने उनमें किया, और वो छोटी भीड़ जो कभी उसके पीछे चलती थी उससे फिरकर दूसरे की हो गई थी। इस घटना से वो परेशान था। ऊपर से तो वो फिलिप्पुस के साथ था और उसके पीछे चलता था और उसने बपतिस्मा भी लिया, परंतु अंदर से ये बातें उसे खाए जा रही थी, इसलिए उसके मन में अधर्म और कड़वाहट का पित्त था। ये कैसे दुख की बात है कि कोई व्यक्ति अपने हृदय में कड़वाहट को रखे। कड़वाहट केवल आपको चोट पहुंचाती है और आपको ही हानि पहुंचाती है। आप कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उससे कहा गया, प्रार्थना करता कि परमेश्वर ये पाप क्षमा करे, क्योंकि तेरे हृदय के भीतर कड़वाहट है, अधर्म है। 24वीं आयत में शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कहीं कोई मुझ पर न आ पड़े। उसने प्रार्थना का निवेदन किया और मेरे विचार में वह गंभीर था। सुबह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरिया के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। इस प्रकार यूहन्ना व पत्रस प्रचारक बन गए। जब वे यरूशलेम को लौट रहे थे तब सामरिया के गांवों में से निकलते हुए उन्होंने बहुतों को सुसमाचार सुनाया। 26 से आगे फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से आजा को जाता है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री वो खजांची था। और भजन करने को यरूशलेम आया था और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। अब यह कई प्रकार से रुचिकर है। प्रथम इसलिए कि यह उस गहराई को बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा हमारी अगुवाई करता है। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है, काश मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान सकूं। सामान्यतः उनके कहने का अर्थ यह होता है, काश परमेश्वर पर्दे पर मेरा भविष्य दिखा देता। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भविष्य में क्या होगा और मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या योजना है और फिर मैं फैसला करूंगा कि क्या करना चाहिए। हम परमेश्वर से अपनी पंचवर्षीय या दस वर्षीय या बीस वर्षीय योजना जानना चाहते हैं। प्रभु मुझे अपनी योजना बता दे। परंतु परमेश्वर ने फिलिप्पुस से इतना ही कहा, उठ उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है दक्षिण की ओर। उससे अधिक कुछ नहीं बताया। यह परमेश्वर की इच्छा का पहला कदम है। परमेश्वर ने उससे तब तक बात नहीं की जब तक उसने पहला कदम न उठाया। हमारे साथ प्राय यही होता है कि जब परमेश्वर हमें पहला कदम बताता है तो हम आगे बढ़ना नहीं चाहते जब तक कि वह दूसरा, तीसरा और चौथा कदम न बताए। हमारी यह कहने की आदत है, प्रभु तू मुझे गाजा क्यों ले जाना चाहता है? वहां कौन मिलेगा? वह तो मरुस्थल है। तू मुझे यहाँ सामरिया की भरी सभा से क्यों लेकर जाना चाहता है? प्रभु आप गलती तो नहीं कर रहे? यहाँ सैकड़ों लोग उद्धार पा रहे हैं, वे आ रहे हैं, सुसमाचार को सुन रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, लेकिन मैं अज्जा क्यों जाऊं? मैं चाहता हूं प्रभु मुझे बताइए ना कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। परंतु सत्य तो यह है कि दूसरा कदम तब तक ज्ञात नहीं होगा जब तक पहला कदम न उठाया जाए। और मुझे विश्वास है कि यदि हम होते तो सामरिया में ही रुके रहते और इस बुलाहट का अधिक स्पष्टीकरण मांगते जो कभी नहीं मिलता, और परमेश्वर इस इथियोपियाई खोजे से मिलने के लिए किसी और को भेजता। एक समय पर एक कदम, हमारे जीवन को दिशा देने का यह परमेश्वर का अपना तरीका है। इसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन को भी दिशा दी। वो एक बार में एक ही कदम ले जाता है। मुझे ये रोमांचक लगता है और सदा ही पसंदीदा लगता है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। जब मैं उसकी इच्छा पर चलता हूं तो कहता हूं, अच्छा प्रभु ये तेरी योजना है, और मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आज्ञाकारी बन जाता हूं। और अब मैं प्रतीक्षा करता हूं कि उसका अगला निर्देश क्या होगा। इस स्थिति में मैं अपनी योजना को अधिक पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे कई बार अपनी योजना में समस्या का सामना करना पड़ा है। परंतु जब मैं पहला कदम उठा लेता हूं और मुड़कर कहता हूं, अच्छा प्रभु अगला कदम क्या है, तो यह बड़ी ही महिमामय बात होती है। फिलिप्पुस ने पहले निर्देश का पालन किया और वह चल पड़ा। यद्यपि उसके मन में बहुत से प्रश्न होंगे, वह सामरिया के इस महान प्रचार कार्य को छोड़कर निकल गया और यरूशलेम से गाजा को मरुस्थल में गया। ध्यान दें कि यह व्यक्ति यरूशलेम में आराधना करने के लिए गया था और अब वो अपने रथ में बैठकर लौट रहा था। वह यशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ते हुए जा रहा था। अपने हृदय में वह परमेश्वर की खोज में था और कोई शक नहीं कि वह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। वह परमेश्वर की अपनी खोज में यरूशलेम आया था, जो आराधना का केंद्र था। इथियोपिया देश का होने के नाते वो यहूदीवाद से परिचित था, क्योंकि जब शीबा की रानी राजा सुलेमान के पास से लौटकर गई, वो अपने साथ यहूदी धर्म के विचार इथियोपिया ले गई थी। और फिर इथियोपिया में एक नया पंथ आरंभ हुआ जिसमें वे यहूदी विश्वास और प्रथाओं का पालन करते थे। उनकी परंपरा के अनुसार शीबा की रानी गर्भवती होकर सुलेमान के पुत्र को ले गई थी, जिसको वे यहूदा के गोत्र का सिंह कहते थे। और हल एसोलासी, जिसे कुछ वर्ष पहले इथियोपिया की राजगद्दी से हटा दिया गया था, सुलेमान का वंशज व यहूदा का राजा होने का दावा करता था, और वह उन लोगों का प्रधान था जो इथियोपिया में यहूदीवाद के अनुयायी थे। इस प्रकार यहूदीवाद इथियोपिया में प्रचलित हो गया और यरूशलेम यहूदीवाद का केंद्र था। इसलिए स्वाभाविक था कि परमेश्वर की खोज इस व्यक्ति को यरूशलेम लेकर आई। दुख की बात तो यह थी कि जब वो यरूशलेम में था तब उसको वह नहीं मिला जिसकी उसको खोज थी, और अब खाली का खाली वह स्वदेश लौट रहा था। परंतु परमेश्वर ने उस खोजी के हृदय को देखा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हर खोजी के हृदय को देखता है और कदम उठाता है कि अपने प्रेम व सत्य को हर परमेश्वर के खोजी पर प्रकट करे। यदि कोई व्यक्ति सचमुच अपने हृदय में परमेश्वर की खोज करता है, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने सत्य को उस पर चमत्कार आदि के द्वारा भी प्रकट करता है। और यही बात थी कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को देखा और उसने फिलिप्पुस के हृदय में हलचल डाली और कहा, उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, जो रेगिस्तान है। जब वो वहां पहुंचा, उसने रथ पर बैठकर जाते हुए व्यक्ति को देखा और प्रभु ने उससे कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। कदम दो, परंतु दूसरा कदम तब तक नहीं बताया गया था जब तक कि पहले कदम की आज्ञा का पालन न हुआ। अब तीसवीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई बद होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। यशायाह 53। यशायाह की यह भविष्यवाणी परमेश्वर के सेवक के विषय में भी, जिसको अपमानित व तिरस्कृत किया जाएगा, जिसका प्राण लिया जाएगा थी, और उसे भेड़ के समान वध किया जाएगा जो दोषों का उत्तर भी न देगा। 34वीं आयत में इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यत वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। फिलिप्पुस ने धर्मशास्त्र के उसी पद से यीशु का प्रचार करना आरंभ किया। उसने यह भी बताया कि इमाउस के मार्ग पर यीशु ने अपने शिष्यों को क्या बताया था, और उसने यीशु के बारे में मूसा तथा भविष्यद्वक्ताओं के वचनों की भी व्याख्या की कि उसको दुख उठाना, मरना व जी उठना था। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं समझता हूं कि उसने उस पर पानी का छींटा नहीं दिया, परंतु वचनों में बपतिस्मा दिया। फिलिप्पुस और खोजा दोनों उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस की सेवकाई लोगों के लिए आनंद का कारण थी। अब आपको याद होगा कि सामरिया में उसकी सेवकाई का परिणाम था कि वह नगर आनंद से भर गया। अब उसने उस व्यक्ति को प्रचार किया जो अपनी यात्रा करता रहा, अब वो खोजा नहीं था। परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध को पाकर उसे वह आनंद मिल गया था जिसका वह खोजी था। इतिहास हमें बताता है कि इथियोपिया में सदा से एक कलीसिया है। निसंदेह इथियोपिया में खोजे का सुसमाचार प्रचार व कलीसिया की स्थापना में बड़ा मुख्य योगदान रहा होगा। वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस के बारे में एक रुचिकर बात है कि पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर गंतव्य स्थान तक ले गया। ये किस प्रकार हुआ मुझे नहीं मालूम। मैंने कई बार जब लंबी यात्राएं की तब मैं थक जाता था और मैं चाहता था कि प्रभु का आत्मा मुझे उठा ले जाए, और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। इस शब्द से लगता है कि वो एक चमत्कारी आकर्षक था। भाषा में तो ऐसा ही लगता है, परंतु जहां तक साधन की बात है कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए अंदाजा लगाना कठिन होगा। अंदाजा क्यों लगाया जाए, कौन जानता है, हम भी इसे नहीं जानते। और आगे लिखा है, और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। एक या दो अध्याय के बाद हम पत्रस को देखेंगे कि वो लुदिया की कलीसिया में गया और हनन्या नाम एक व्यक्ति को चंगा किया जो वर्षों से अपने पलंग पर था। और फिर हम याफा की कलीसिया में देखते हैं कि एक स्त्री जो दोरकस नाम की थी उसकी मृत्यु हो गई थी। तब पत्रस ने याफा को जाकर दोरकस को जीवित किया। ये कैसे हुआ, क्या याफा तथा लुदिया में कलीसियाएं थीं? यदि आपके नक्शे पर अज्जा और अशदोद को देखेंगे, और हमें बताया गया है कि अशदोद से चलकर नगर नगर प्रचार करता हुआ वह कैसरिया पहुंचा, मेरा विश्वास है कि इस यात्रा के दौरान लुदिया में ये कलीसियाएं शायद प्रचारक फिलिप्पुस के द्वारा स्थापित की गई थी, क्योंकि ये ही वे कुछ नगर थे जो अशदोद से कैसरिया तक उसके मार्ग में थे। इन्हीं क्षेत्रों में बाद में पत्र से निवेदन किया गया कि वह सेवकाई के लिए आए। लगता है कि जब फिलिप्पुस कैसरिया में आया तो वह वहीं रहने लगा। मैं समझ सकता हूं क्यों, क्योंकि वहां भूमध्य सागर पर एक सुंदर बंदरगाह है। भूमध्य सागर का जल विशेष रूप से नीले रंग का है। समुद्री तट शानदार है, और यदि मुझे निवास के लिए चुनना हो तो कैसरिया किसी भी प्रकार बुरा चयन न होगा। और इस प्रकार फिलिप्पुस वहीं रुका और कैसरिया में उसने अपना घर बना लिया। वर्षों बाद पौलुस वहां कैसरिया में फिलिप्पुस के पास गया और अपने यरूशलेम यात्रा पर आगे जाने तक उसके पास रुका रहा। इसलिए मैं कैसरिया में उसके घर पर बल दे रहा हूं, क्योंकि हम प्रेरितों के काम को समाप्त करने से पहले फिर इस घर में लौटेंगे। हम नवे अध्याय में आते हैं जहां पौलुस और उसके जीवन परिवर्तन को देखेंगे और इस परिवर्तन के रुचिकर पहलू पर ध्यान करेंगे। फिर पत्रस के लुदिया व याफा जाने के बारे में तथा अध्याय 10 में कैसेरिया में कुर्नेलियुस के घर में अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तेरे वचन के लिए तथा उस उत्साह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमारे हृदय में आपने दिया है कि किस प्रकार पवित्र आत्मा लोगों का प्रयोग करता है। हम महसूस करते हैं कि वे हमारे समान साधारण लोग थे, इसलिए हे प्रभु, हमारी इच्छा है कि यीशु मसीह के प्रेम को अपने चारों ओर सुनाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन का इस्तेमाल करे। प्रभु, आज हम अपना जीवन तुझे सौंपते हैं। हमारे जीवन जीवित बलिदान हो ताकि हे परमेश्वर, हम तेरे हाथ में तेरा काम करने के लिए उपकरण बन सकें। प्रभु, अपने सामर्थ्य से हमारा अभिषेक कर, यीशु के नाम में आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको अपने प्रेम वो आत्मा से भरे और आपके जीवन को उपकरण के रूप में अपना कार्य पूरा करने के लिए प्रयोग करे। प्रभु आपको आशीष दे।